आज जो विषय हम आपके लिए लेकर आए हैं वो है हिंदी, और हम बात करेंगे शतरंज के खिलाड़ी। जी हाँ, और इस पर विस्तृत जानकारी के लिए हमारे साथ बनी हुई है हमारी एक्सपर्ट डॉक्टर मोनिका कादियत। मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे साथ।
जी धन्यवाद। शिक्षार्थियों, श्रोताओं, आप सभी को नमस्कार। और आज के इस कार्यक्रम में हम बात करने वाले हैं शतरंज के खिलाड़ी पाठ पर। शिक्षार्थियों, आप ज़रूर जानते होंगे कि ये जो पाठ है ये किसने लिखा है। ये प्रेमचंद जी ने ये कहानी लिखी है, और प्रेमचंद जिनको किसी भी परिचय की आवश्यकता नहीं है, तो उनके द्वारा लिखी गई ये रचना है। बहुत ही महत्वपूर्ण है, कई तरह से हमें संदेश देती है, हमें अपने कर्तव्य के प्रति आगाह भी करती है, और कहीं ना कहीं हमें आत्मविश्लेषण के लिए भी प्रेरित करती है। सबसे पहली बात जो मैं इस चर्चा में, इस मंच के माध्यम से आपसे कहना चाहूँगी कि जब हम समाज में रहते हैं तो हम अपने अधिकारों की बात करते हैं, कर्तव्यों की बात थोड़ा कम करते हैं। मुझे लगता है कि हमें अपने कर्तव्यों पर भी ध्यान देना चाहिए, यानी इस समाज को सुखी बनाए रखने के लिए हमारी जिम्मेदारी क्या क्या है, हमें इस बारे में भी सोचना चाहिए। कल्पना कीजिए कि समाज में कोई भी व्यक्ति अपने कर्तव्य के बारे में नहीं सोच रहा है, सिर्फ ये सोच रहा है कि मैं कैसे इस इन सब संसाधनों से मैं लाभान्वित कैसे हूँ। तो ये संसाधन कितने दिन रहेंगे? बहुत दिन तो नहीं रहेंगे, क्योंकि हमने कुछ भी दिया नहीं है समाज को, हम सिर्फ ले रहे हैं। और किसी एक कह सकते हैं सकारात्मक दिशा की ओर ये समाज जो है अग्रसर नहीं हो रहा है। समाज कौन है? हम ही तो हैं। तो हमारी सोच, हमारी विचारधारा, हमारा रहने का ढंग, हर चीज़ निर्धारित करती है कि हमारा जो समाज है वो कैसा होगा। विकसित समाज होगा, अवनति की ओर अग्रसर समाज होगा, उन्नति की ओर अग्रसर समाज होगा, कैसा समाज होगा, ये हमारी प्रवृत्तियां निर्धारित करती हैं। तो इस कहानी के माध्यम से शिक्षार्थियों, प्रेमचंद जी ने बहुत ही सजीव ढंग से हमारे सामने एक स्थिति रखी है, और ये स्थिति हमें इतिहास की तरफ ले जाती है और बताती है कि उस समय किस तरह का समाज था, किस तरह के लोग थे, कैसा उनका रहन सहन था, और ऐसा क्या था जो वो नहीं कर रहे थे, और ऐसा क्या था जो वो कर रहे थे। इन्हीं स्थितियों के माध्यम से उन्होंने एक संदेश इस रचना में गूंथ कर हमारे सामने रखा है। इसे हमें डिकोड करना है, और हम और आप मिलकर इस संदेश को डिकोड करेंगे, क्योंकि बहुत ज़रूरी है रचनाकार की रचना के पीछे जो उसका मूल उद्देश्य है उसको समझना। तो शिक्षार्थियों, ये जो कहानी है इसमें हम देखेंगे कि शासक वर्ग की विलासिता के परिणाम भी नज़र आएंगे, कि अगर शासक वर्ग जो है वो सिर्फ विलासी हो जाता है, सिर्फ सुख सुविधाओं में मस्त रहता है, किसी और किसी कर्तव्य के प्रति उसका कोई ध्यान नहीं रहता है और कुछ काम नहीं करता है, सिर्फ अपने आनंद में मगन रहता है, तो उसका परिणाम क्या होता है, इस बारे में भी हम इसकी विवेचना कर सकेंगे। देश और समाज के प्रति कर्तव्य पालन की क्या आवश्यकता है, जिसके बारे में मैंने आरंभ में ही, परिचय में ही आपसे बात की, तो इस क्या आवश्यकता है, इस पर भी आप अपने विचार व्यक्त कर सकेंगे। इसमें दो प्रमुख पात्र हैं, मुख्य पात्र हैं, तो उनके चरित्र की विशेषताएं क्या हैं, उनका भी आप उल्लेख कर सकेंगे। इस कहानी का एक समुदाय है, एक परिवेश, एक रहन सहन है, तौर तरीके हैं, वो परिवेश भी आप बता सकेंगे। हिंदी भाषा का जो हिंदुस्तानी स्वरूप है, जिसमें उर्दू मिश्रित जो शैली है, वाक्य हैं, शब्द हैं, उनकी विशेषताएं जो हैं उनके बारे में भी बता सकेंगे। हिंदी के मुहावरे आप सभी जानते हैं, हम अपनी बातों को और प्रभावी ढंग से व्यक्त करने के लिए मुहावरों का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ भी बहुत सारे मुहावरों का प्रयोग किया गया है। तो इस कहानी में जब आप वो मुहावरे भी कहानी के ही रॉ में आप पढ़ेंगे तो उससे आप हिंदी के मुहावरों को अपने वाक्यों में भी, अपने लेखन में भी आप प्रयोग कर सकेंगे। और सबसे महत्वपूर्ण, कहानी के मूल संदेश का उल्लेख कर सकेंगे। तो शिक्षार्थियों, मैं आरंभ में आपको बताना चाहूँगी कि ये जो समय है इस रचना में जिस विषय को लिया गया है, ये वो समय है जब भारत आज़ाद नहीं था, भारत गुलाम था। गुलाम यानी हमें किसी भी प्रकार का अधिकार नहीं था, हम पर शासन था ब्रिटिश का, ब्रिटिश साम्राज्य का। जो ये शासन था उसने हमें हर स्तर पर कमज़ोर किया था, हमारा मनोबल टूट गया था और हम अपने भाग्य को कोस रहे थे। और कहीं भी इस तरह की जो चेतना थी कि गुलामी की जंजीरों को तोड़ना है और स्वतंत्रता हासिल करनी है, कहीं बहुत दबे दबे ये चेतना सब में फैल रही थी, लेकिन उसका जो स्तर था वो बहुत ही कम था। और समाज में निराशा थी और लोगों को इस बारे में भरम था, या उनकी सोच इस तरह की हो गई थी कि आज में जीते हैं, अभी जो है उसमें सुख लेते हैं, सब मिलकर कितना लड़ लेंगे या कितना मुकाबला कर लेंगे या किस तरह से संघर्ष कर लेंगे। तो किसी भी परिस्थिति को का सामना करने के लिए हमारी दो तरह की प्रतिक्रियाएं होती हैं। या तो हम परिस्थिति से जूझने के लिए भिड़ जाते हैं कि चलिए अब देख ही लेते हैं कि क्या होगा, और या फिर हम पूरी तरह से नकार देते हैं। हम उस कबूतर की तरह आंखें बंद कर लेते हैं और ये समझ लेते हैं कि बिल्ली नहीं है, यहाँ ब्रिटिश साम्राज्य जो है उसका जो शोषण है, उसका जो दमन है, वो इस बिल्ली के रूप में, तो और हम कबूतर की तरह वो आंखें बंद किए हुए। तो यहाँ इस कहानी में जो समाज है उसने आंखें बंद कर ली हैं अपने कर्तव्य के प्रति, और बस ये समझ लिया है कि यही हमारा भाग्य है और इसी में रहते हैं, और जो भी आनंद के क्षण हैं बस जी लेते हैं, जाने कल क्या होगा। तो इस पृष्ठभूमि पर लिखी हुई ये कहानी है और इसके आरंभ में ही स्थितियां बताई गई हैं। उन स्थितियों को आप पढ़ेंगे, मैं आपके लिए थोड़ा सा पढ़ूंगी, और उसके माध्यम से भी आप समझ पाएंगे कि किस तरह का समाज उस समय का था। यहाँ शुरू में ही लिखा गया है कि वाजिद अली शाह का समय था, लखनऊ विलासिता के रंग में डूबा हुआ था। लखनऊ राजधानी थी वाजिद अली शाह की, और लखनऊ पूरी तरह से विलासिता। दूसरे वाक्य में भी में ही आप देख लीजिए, उसी से पता चल जाता है, एकदम आरंभ में ही बिना किसी लाग लपेट के बिल्कुल आरंभ में ही दे दिया गया है। लखनऊ विलासिता के रंग में डूबा हुआ था, छोटे बड़े गरीब अमीर सभी विलासिता में डूबे हुए थे। कोई नृत्य और गान की मजलिस सजाता था तो कोई अफीम की पिनक ही में मजे लेता था। यानी नाच है, गाना है, अफीम का नशा है, और क्या चाहिए, उनकी ऐसी सोच थी। जीवन के प्रत्येक विभाग में आमोद प्रमोद का प्राधान्य था, उसकी प्रमुखता थी। शासन विभाग में यानी प्रशासन जो था, जो शासन कर रहा है, एडमिनिस्ट्रेशन। साहित्य के क्षेत्र में साहित्यकार का क्या काम है, समाज के सुख दुख को लेकर आना, सामने लेकर आना, उसको साझा करना अपने साहित्य के माध्यम से। लेकिन साहित्यकार भी वो कार्य नहीं कर रहे थे, वो और बात है कि प्रेमचंद जी ने इस आधार पर, इसे विषय बनाकर ये रचना लिखी है। उन्होंने बताया कि साहित्य क्षेत्र में भी यही हाल था, सामाजिक अवस्था में भी लोग भी इसी तरह के थे, कला कौशल में भी। कलाकार का क्या कार्य होता है कि जीवन के संघर्ष को अपने कला के माध्यम से वो व्यक्त करता है, वो लोग भी ये काम नहीं कर रहे थे। उद्योग धंधों में भी ऐसा ही था, अब उद्योग धंधों में हम किन किन बातों को सोचेंगे जब हम औद्योगिक प्रगति की बात करते हैं, लेकिन यहाँ आगे वो बताएंगे। आहार व्यवहार में सर्वत्र विलासिता व्याप्त हो रही थी, हर जगह विलासिता है, मौज है। राज कर्मचारी विषय वासना में डूबे हुए थे। कविगण, जहाँ बताया ना कि साहित्य के क्षेत्र में, तो कह रहे हैं कविगण प्रेम और विरह के वर्णन में, उन्हें साहित्य के माध्यम से समाज की स्थिति बतानी थी, लेकिन वो ये नहीं कर रहे थे, वो सस्ता प्रेम बेच रहे थे, प्रेम बता रहे थे, प्रेम का मिलन पक्ष बता रहे थे, प्रेम का विरह पक्ष बता रहे थे, इसी में ही लगे हुए थे। लेकिन जब शांति नहीं है, सुख नहीं है, तो प्रेम कैसा है? लेकिन यहाँ साहित्यकार सिर्फ प्रेम का वर्णन करने में मगन थे। कारीगर कलावतू और चिकन बनाने में लगे हुए थे, यानी कपड़े, खूबसूरत खूबसूरत कपड़े बना रहे थे, सोने चांदी के तार बना रहे थे कि इनको जो धनी लोग हैं वो पहनेंगे और अपने पर मोहित होंगे, बस देखेंगे कि मैं कितना सुंदर लग रहा हूँ, मैं कितनी सुंदर लग रही हूँ, और बस इसी में ही सुख खोजेंगे। वो ये नहीं देख रहे हैं कि समाज में किस तरह की बुराइयाँ फैली पड़ी हैं, इसको ठीक करना है। शरीर को सजाने में इतना समय वो लगा रहे थे। और व्यवसायी क्या कर रहे थे? व्यवसायी सौंदर्य प्रसाधन बना रहे थे, सुरमे बना रहे थे, इत्र खुशबुओं का व्यापार कर रहे थे, मिस्सी और उबटन का रोजगार करने में लिप्त थे, सौंदर्य प्रसाधन वो बना रहे थे। सभी की आंखों में विलासिता का मद छाया हुआ था। संसार में क्या हो रहा है इसकी किसी को खबर न थी। बिल्कुल कह सकते हैं कि आंखें बंद किए हुए थे कि क्या हो रहा है हम जानना नहीं चाहते, जानकर भी हम जानना नहीं चाहते, बटेर लड़ रहे हैं। अब यहाँ पर आमोद प्रमोद मनोरंजन हो रहा है, बटेरों की लड़ाई कराई जाती है और उससे एक कह सकते हैं कि बहुत ही उत्साह मिलता, बहुत ही प्रसन्नता इन लोगों को होती थी। तीतरों की लड़ाई के लिए पाली बदी जा रही है, कहीं चौसर बिछी ये खेल खेला जा रहा है, पौ बारह का शोर मचा हुआ है, मैं जीता इस तरह का शोर मचा हुआ है, कहीं शतरंज का घोर संग्राम छिड़ा हुआ है, कहीं शतरंज पर मुकाबला हो रहा है। अब यहाँ पर ये बताया गया है कि समाज का प्रत्येक वर्ग सुख जुटाने में, सुविधाएं जुटाने में, खुद को सजाने में, अपना मनोरंजन करने में, खुद को सुंदर बनाने में ही लगा हुआ है। ये जो शारीरिक सुख हैं, ये बहुत ही उथले सुख उन्हीं की प्राप्ति में लगा हुआ है और इन्हें बिल्कुल इस बात की खबर नहीं है कि विश्व में क्या हो रहा है, हमारे आसपास क्या हो रहा है, हमारे देश की कैसी स्थितियां हैं, हम किस तरह से पतन के गर्त में जा रहे हैं, हम गुलाम होते जा रहे हैं, हमें कुछ करना चाहिए। कुछ भी इन लोगों को इस बात से सरोकार नहीं था, कोई चिंता नहीं थी, उन्हें लगता था ये शायद कोई और करेगा। तो इस तरह का समाज था शिक्षार्थियों। और जब ये कह रहे हैं कि राजा से लेकर रंक तक, राजा जो शासक है, जो बिल्कुल उच्चतम स्तर पर बैठता है, जिसके जो कार्य हैं वो पूरे समाज को प्रभावित करते हैं, राजा भी उसी तरह का था। और रंक जो सबसे गरीब है, उसका भी हाल यही था, सभी इसी धुन में मस्त थे। यहां तक कि फकीरों को पैसे मिलते तो वे रोटियां ना लेकर अफीम खाते या मदक पीते। अगर कोई फकीर भोजन के लिए किसी के आगे हाथ फैला रहा है तो उसका उद्देश्य ये है कि उसे उसका पेट भर जाए, उसकी भूख मिट जाए, है ना? लेकिन ऐसा नहीं था, उन्हें अगर पैसे मिलते थे तो वो भोजन नहीं कर रहे हैं जिसकी उन्हें सबसे अधिक आवश्यकता है, वे अफीम खा रहे हैं, वे नशा कर रहे हैं। कितने दुख की बात थी कि वे नशे में इतने मस्त हैं कि उन्हें इस बात का होश ही नहीं है कि उनको उनकी जो मूलभूत आवश्यकता है शरीर की, भोजन, वो उसे भी नकार रहे हैं। वो इतने अधिक नशे में मगन है। शतरंज, ताश, गंजीफा खेलने से बुद्धि तीव्र होती है, विचार शक्ति का विकास होता है, पेचीदा मसलों को सुलझाने की आदत पड़ती है। ये दलीलें जोरों के साथ पेश की जाती थी। यानी जब भी कोई व्यक्ति इस तरह का कार्य करता है जो समाज में स्वीकार्य नहीं होता है या जिसे थोड़ी हेय दृष्टि से देखा जाता है, तो वह व्यक्ति क्या करता है, उसके लिए एक डिफेंस मैकेनिज्म तैयार कर लेता है। हम अगर कोई गलत काम करते हैं तो हम उसका औचित्य सिद्ध करने लगते हैं, उसे न्याय संगत बताने लगते हैं कि नहीं, ऐसा करना बहुत अच्छा था। उसी तरह से ये लोग भी यही कार्य कर रहे थे। ये कह रहे थे कि अगर हम शतरंज खेलते हैं या हम ताश खेलते हैं तो उससे जो बहुत ही मुश्किल जो मसले हैं, विषय हैं, उनको सुलझाने का हुनर पैदा होता है हम में। हमारी जो बुद्धि है वो तीव्र होती है, तो इसलिए हम ये करते हैं। हम ऐसे ही नहीं करते हैं कि हमें नशा हो रहा है या हम अपनी मस्ती में डूबना चाहते हैं, ऐसा नहीं करते। हमारी बुद्धि तीव्र होती है इससे। इसलिए अगर मिर्जा सज्जाद अली और मीर रोशन अली अपना अधिकांश समय बुद्धि तीव्र करने में व्यतीत करते थे, तो किसी विचारशील पुरुष को क्या आपत्ति हो सकती थी। देखिए, अब यहाँ पर हमारे पात्रों का प्रवेश हो रहा है, तो उनका परिचय दिया जा रहा है। किस तरह से कह रहे हैं कि अगर ये अपना अधिकांश समय, तो यहाँ पर इनका भी यही तर्क है कि ये दोनों व्यक्ति, मीर और मिर्जा, दोनों अपना ज्यादातर समय बुद्धि तीव्र करने में व्यतीत करते थे। यानी कुछ ऐसा काम करते थे जिस पर शायद हमें एतराज हो। ये लोग क्या करते थे, ये शतरंज खेलते थे। तो किसी विचारशील, क्योंकि यही सोच समाज में व्याप्त थी कि शतरंज खेलने से पेचीदा मसलों को सुलझाने का हुनर पैदा होता है, तो ये लोग भी यही काम कर रहे थे अपने अधिकांश समय। तो क्या आपत्ति है, बुद्धि तो तीव्र कर रहे हैं। तो इस तरह से ये शिक्षार्थियों यहाँ पर व्यंग्य किया है प्रेमचंद जी ने, और बताने की कोशिश की है कि ये लोग भी यही कार्य कर रहे थे। दोनों के पास मौरूसी जागीरें थी, यानी इनको विरासत में मिली थी जागीरें, तो बहुत पैसा था इनके पास। और जब पैसा होता है तो कुछ कार्य करने की या कुछ सकारात्मक, ऐसा कुछ अपनी भूमिका अदा करने की तलब क्यों हो। आराम किया जाए, मजा किया जाए, आनंद लिया जाए, तो इसी तरह की सोच इन लोगों की थी। जीविका की कोई चिंता ना थी। अगर जागीरें ना हो तो अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए तो व्यक्ति को कुछ काम तो करना पड़ेगा ना। अपने परिवार का पेट भरना है, अपनी जरूरतें पूरी करनी है, लेकिन इनके पास इस तरह की कोई चिंता नहीं थी। घर में बैठे चखौतियां करते थे और खूब अपना मजाक करते थे, खूब खुश होते थे। आखिर और करते ही क्या, यानी इनके पास कोई काम नहीं था। प्रातःकाल दोनों मित्र नाश्ता करके बिसात बिछा कर बैठ जाते, मोहरे सज जाते और लड़ाई के दाव पेंच होने लगते। फिर खबर ही ना होती थी कि कब दोपहर हुई, कब तीसरा पहर, कब शाम। घर के भीतर से बार बार बुलावा आता कि खाना तैयार है। यहां से जवाब मिलता, चलो आते हैं, दस्तरखान लग बिछाओ। यहां तक कि बावर्ची विवश होकर कमरे ही में खाना रख जाता था, और दोनों मित्र दोनों साथ काम साथ साथ करते थे। अब यहां पर विस्तार से ये बता दिया गया है कि इन लोगों को, इन दोनों को, मीर को और मिर्जा को, शतरंज खेलने की लत थी। नशा था इनको कि शतरंज में जो मजा है वो किसी चीज में नहीं है। आजीविका अर्जित करने की इनको चिंता न थी, खाना खाने की इनको चिंता न थी। बार बार जब भी घर के भीतर से बुलावा आता कि खाना तैयार है, खाने के समय पर घर की गृहिणी तो चिंतित होगी कि खाना खा लूं, लेकिन ये बार बार ये इस तरह का इस तरह की बात करते थे कि चलो आते हैं, खाना लगाओ, दस्तरखान लगाओ, खाना लगाओ। और जो इनका खाना बनाने वाला था, जो बावर्ची, बावर्ची यानी खाना बनाने वाला, ये भी विवश हो जाता था कि क्या है, खाना खाने आ ही नहीं रहे हैं। तो वो भी खाना कमरे में ही रख जाता था। और फिर क्या होता था, अब और अच्छी बात है, खाना वहीं पर है, बिल्कुल समय नष्ट नहीं होगा, बुद्धि लगातार तीव्र होगी। तो ये दोनों मित्र मिलकर खाना भी खाते थे और शतरंज भी खेलते रहते थे। मिर्ज़ा सज्जाद अली के घर में कोई बड़ा बूढ़ा न था, इसलिए उन्हीं के दीवान खाने में बाजियां होती थी। तो यहाँ पर शिक्षार्थी देखिए, एक ही वाक्य में ये बात बता दी गई है कि घर में बड़े बूढ़े का कितना महत्व है। अगर घर में बड़े बूढ़े हों तो आपका भी अनुभव रहा होगा इस बारे में कि हमारे घर के बड़े हमें सही और गलत की शिक्षा लगातार देते रहते हैं। कई बार प्यार से बताते हैं, कई बार सुझाव देते हैं, कई बार व्यंग्य भी करते हैं और कई बार तो जोर से डांटते भी हैं। ये भारतीय समाज में, भारतीय परिवारों में ये बात सामान्य है। और इस तरह से हम सब ये मानते हैं कि बड़ों का आशीर्वाद हम पर बना रहता है और बड़े हमें गलत काम करने से लगातार रोकते रहते हैं और हमें अच्छे कार्य करने की ओर प्रेरित करते हैं। तो इस तरह से बड़े बूढ़ों की क्या भूमिका है आप समझ ही सकते हैं। मिर्ज़ा सज्जाद अली जो थे, इनके घर में कोई बड़ा बूढ़ा न था, यानी कोई नहीं कहने वाला था, कोई रोकने वाला नहीं था, कोई टोकने वाला नहीं था, कोई इस बात पर एतराज़ करने वाला नहीं था कि तुम खाना भी नहीं खा रहे हो, तुम सारा दिन से शतरंज पर बैठे हो, कुछ काम कर लो, अपनी जागीरें संभाल लो। कुछ समाज में इस पैसे का सही उपयोग के लिए इस पैसे को थोड़ा दान कर दो, थोड़े अच्छे काम कर लो, कोई बताने वाला नहीं था। और जब कोई बताने वाला नहीं है तो फिर अपनी मर्जी से ज़िंदगी जी जाएगी, यानी खूब मस्ती से जी जाएगी, खूब आराम से, और सिर्फ शतरंज खेली जाएगी। तो शतरंज की बाजी उन्हीं के दीवान खाने में होती थी। मगर यह बात न थी कि मिर्ज़ा के घर के और लोग उनके इस व्यवहार से खुश हों, तो ऐसा नहीं था। बाकी लोग भी परेशान थे, बड़े बूढ़े होते तो वो तो बहुत गुस्सा करते, लेकिन और लोग भी इसमें परेशान थे। घर वालों का तो कहना ही क्या, यानी घर वाले तो परेशान थे ही, मोहल्ले वाले, घर के नौकर चाकर तक नित्य द्वेषपूर्ण टिप्पणियां किया करते थे। लगातार उनको इस तरह से बहुत दिक्कत होती थी, बहुत आपत्ति होती थी कि क्या ये पूरा दिन हमेशा लगे रहते हैं अपने इस शतरंज की बाजियों में और कुछ काम ही नहीं करना है। और फिर ये लोग जो थे, ये इनको नहीं कोसते थे, मिर्ज़ा और मीर को, ये टिप्पणी करते थे शतरंज पर और ये कहते थे बड़ा मनहूस खेल है, घर को तबाह कर देता है, खुदा न करे किसी को इसकी चाट पड़े, यानी किसी को इसकी लत पड़े। आदमी दीन दुनिया किसी के काम का नहीं रहता, न घर का न घाट का, बुरा रोग है। तो इस तरह से शिक्षार्थियों, मोहल्ले वाले, आस पड़ोस वाले सभी लोग, घर के नौकर चाकर भी इस बारे में टिप्पणी करते थे और इन्हें नहीं कहते थे, ये कहते थे कि खेल बहुत मनहूस है और खेल के कारण ये व्यक्ति जो हैं, इन्हें किसी दीन दुनिया की कोई खबर नहीं है, इनको इसकी लत पड़ गई है। तो शिक्षार्थियों, आप खुद इस बात को तय कीजिए, क्या शतरंज बुरा है या शतरंज की लत लगाने वाले व्यक्तियों में कोई गलत बात है, कोई कमी है? क्योंकि शतरंज तो एक बहुत ही प्रसिद्ध खेल है और आप देखेंगे कि राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हमारे यहाँ पर खेला जाता है, लेकिन यहाँ शतरंज के खेल को मनहूस बताया गया है। तो इस बारे में खैर आप तय कीजिए। और आगे कहते हैं कि यहाँ तक कि मिर्जा की बेगम को इससे इतना द्वेष था कि अवसर खोज खोज कर पति को लताड़ती थी। यानी अब पति जो है वो सारा दिन अपने खेल में लगा रहता है, उसे घर के किसी काम के प्रति उसकी कोई लगावट नहीं है, उसे ये नहीं देखना है कि घर परिवार में उसके जो परिवारजन है, उसके जो सदस्य हैं परिवार के, वो खुश हैं कि नहीं, उनके लिए उसे कुछ कार्य करना चाहिए कि नहीं, किसी बात की कोई चिंता नहीं करता है। तो जाहिर सी बात है, घर की जो गृहिणी है उसे इस बात से एतराज़ होगा। तो वे अपने पति को लगातार अवसर खोज खोज कर वे गुस्सा करती रहती थी, लताड़ती रहती थी, पर उनको इसका अवसर मुश्किल से मिल पाता था। अब अगर गुस्सा करना है तो उसके लिए जरूरी है जिसे गुस्सा किया जाए वो सामने हो, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से सामने तो हो। अभी बहुत सारे तरीके चल गए हैं आधुनिक समाज में कि हम अगर किसी को गुस्सा करना चाहें, किसी के प्रति स्नेह व्यक्त करना चाहें, तो हम फोन पर कर सकते हैं, सोशल मीडिया पर कर सकते हैं, कि बहुत अलग अलग माध्यम। लेकिन उस समय का जो माध्यम था, आप सामने ही बुलाकर डांट सकते हैं, लेकिन उनका अवसर ही नहीं मिलता था। क्यों नहीं मिलता था आप बताइए, कि वो इनकी पत्नी को डांटने का अवसर क्यों नहीं मिल पाता था? क्योंकि मिर्जा सामने आते ही ना थे, तो वो क्या करते रहते थे, वो शतरंज के नशे में डूबे रहते थे, निरंतर शतरंज खेलते रहते थे। अब शतरंज मित्र के साथ खेल रहे हैं तो वहां जाकर उन्हें बेइज्जत करना, उन्हें लताड़ना सही नहीं है। और घर के भीतर वे कम जाते थे, जब भोजन करना है, अपनी जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं, नित्य कर्म हैं, उनके लिए ही शायद वो जाते होंगे, तो उन्हें अवसर ही ना मिलता था। किस तरह से डांटें? तो वो क्या करती थी, वे सोती रहती थी। जब वे सोती रहती थी तब तक बाजी बिछ जाती थी, सुबह सोकर उठी नहीं उससे पहले बाजी बिछ जाती है। तो इससे क्या पता चल रहा है शिक्षार्थियों, कि कितना अधिक इन दोनों मित्रों में शतरंज खेलने के प्रति कितनी अधिक लगावट है, कितनी अधिक लत, किस स्तर तक ये लत है कि उठते ही वे अपना इस खेल की बाजी जो थी उसे बिछा लेते थे। और रात को जब वे सो जाती थी तब कहीं मिर्जा जी घर में आते थे। यानी इतनी देर तक वो शतरंज ही खेलते थे। तो जब पति डांटने के लिए, पति के प्रति गुस्सा है, पति सामने नहीं है, तो क्या होगा, गुस्सा तो है, अब किस पर व्यक्त करें? तो एक तरीका उन्होंने निकाल लिया था, हाँ, नौकरों पर वह अपना गुस्सा उतारती रहती थी, और कोई चारा नहीं था। इससे पता चलता है शिक्षार्थियों कि उस समय का जो स्त्री समाज था, उस समय जो स्त्रियों की स्थिति थी वो कैसी थी, घर के भीतर है उनकी स्थिति, वे किसी भी तरह से बाहर आकर अपना रोष व्यक्त नहीं कर सकती थी, अपना विरोध व्यक्त नहीं कर सकती थी। और जिस तरह से शिक्षार्थियों अभी आप देखेंगे कि घर में अगर पति का कोई कार्य पत्नी को सही नहीं लगता है, कोई निर्णय सही नहीं लगता है, तो वो तुरंत आक्षेप करती हैं, वो तुरंत एतराज करती हैं। बहुत सारे परिवारों में ये है और ये सही भी है, लेकिन उस समय के समाज में स्त्रियां शायद इतनी स्वतंत्र नहीं थी कि वे ऐसा कर सकती, तो वे अपना गुस्सा नौकरों पर उतारती थी। क्या बोला उन्होंने, वहां यहाँ उनका एक संवाद है, क्या पान मांगे हैं, कह दो आकर ले जाएं, खाने की फुर्सत नहीं है, ले जाकर खाना सिर पर पटक दो, खाएं चाहे कुत्ते को खिलाएं। पर रूबरू वे भी कुछ ना कह सकती थी, यानी वे जब पति सामने आते थे, अब नौकरों को तो बोल दिया, नौकर थोड़े ही वहां जाकर बोलेंगे, लेकिन जब पति सामने है, जब मिर्जा सामने है, तो रूबरू वे भी कुछ न कह सकती थी। उनको अपने पति से उतना मलाल न था जितना मीर साहब से। अब अपने पति से उन्हें गुस्सा नहीं है, उन्हें ऐसा लगता है कि मीर साहब के आने पर या उनके दबाव देने की वजह से मेरा पति मिर्ज़ा शतरंज खेलता है, जबकि स्थिति ये नहीं थी। कोई आपको, किसी भी व्यक्ति को कोई कार्य करने के लिए कितना विवश कर सकता है? अगर सुबह से लेकर रात तक कोई व्यक्ति शतरंज खेल रहा है या कोई अन्य कोई इस तरह का कार्य कर रहा है जिसके लिए उसका जो परिवार है वो क्षुब्ध है, वो दुखी है, तो क्या शिक्षार्थियों आपको ऐसा लगता है कि उस व्यक्ति पर किसी और का दबाव होगा तब वो ऐसा कार्य कर रहा है? कभी ना कभी तो वो बगावत करेगा, कभी ना कभी तो वो विरोध करेगा, हर रोज वही काम करता रहेगा, कहीं ना कहीं उसकी अपनी स्वीकृति है ना उसमें। लेकिन ये बात उनकी बेगम नहीं समझना चाहती थी, वो मीर पर ही इस इल्ज़ाम को रखती थी कि उन्होंने ही उनके पति को बिगाड़ा है। अब आगे वही बात कह रही हैं, उन्होंने उनका नाम, उन्होंने किसने, बेगम ने, उनका किसका, मीर का, तो उन्होंने उनका नाम मीर बिगाड़ू रख छोड़ा था। शायद मिर्ज़ा जी अपनी सफाई देने के लिए सारा इल्ज़ाम मीर साहब ही के सिर थोप देते थे। देखिए ये व्यंग्य है, और इस तरह से भी आप पता लगा सकते हैं शिक्षार्थियों की जो मिर्ज़ा थे उनका किस तरह का स्वभाव था। जिम्मेदारी नहीं लेना चाहते थे, पहले तो कोई कार्य नहीं करते थे, नशे की लत थी, और दूसरा जहाँ पर उन्हें इस बारे में बताना चाहिए कि हाँ ठीक है मुझे पसंद है, विरोध कर सकते हैं, वो मुझे पसंद है और मैं खेलूँगा, वो ऐसा नहीं करते थे। वो उसका इल्ज़ाम भी अपने मित्र पर डाल देते थे कि वो बुला लेता है और मुझे खेलना पड़ता है, मैं बिल्कुल नहीं खेलना चाहता हूँ, लेकिन क्या करें, वो आ गया है तो खेलना पड़ेगा। तो इस तरह से वे अपने इस इल्ज़ाम से बच जाते थे। तो एक छोटा सा किस्सा हुआ शिक्षार्थी, और उससे भी आपको पता चला कि पता चलेगा कि किस तरह की स्थिति उस समय स्त्रियों की थी। एक दिन बेगम साहिबा के सर में दर्द होने लगा, उन्होंने लौंडी से कहा जाकर मिर्ज़ा साहब को बुला ला, किसी हकीम के यहाँ से दवा लाएं, दौड़ जल्दी कर। लौंडी गई तो मिर्ज़ा जी ने कहा चल अभी आते हैं, बिल्कुल वैसे ही जैसे वो बोलते थे कि खाना खा लो, कि हाँ चलो खाना लगाओ अभी आते हैं। बेगम साहब का मिजाज गर्म था, यानी उन्हें बहुत गुस्सा आया हुआ था। इतनी ताब कहाँ कि उनके सर में दर्द हो और पति शतरंज खेलता रहे। चेहरा सुर्ख हो गया, यानी गुस्से के मारे उनका जो मुंह था वो लाल हो गया। लौंडी से कहा जाकर कह अभी चलिए, नहीं तो वो आप ही हकीम के यहाँ चली जाएंगी। मिर्ज़ा जी बड़ी दिलचस्प बाजी खेल रहे थे, दो ही किस्तों में मीर साहब की मात हुई जाती थी। झुंझलाकर बोले क्या ऐसा दम लबों पर है, जरा सब्र नहीं होता। तो यहाँ जो पत्नी ने, बेगम ने जो मिर्ज़ा जी के लिए जो धमकी भरा पैगाम भिजवाया, इसका क्या मतलब था कि अभी जाकर दवा लेकर आओ किसी हकीम से, नहीं तो आप ही हकीम के यहाँ चली जाएंगी। यानी स्त्री का खुद किसी व्यक्ति के को साथ लिए बगैर किसी हकीम के, किसी अन्य व्यक्ति के पास जाना, दवा के लिए जाना सही नहीं था उस समाज में। इसीलिए उन्होंने इस बात की ही धमकी दी कि मैं तो खुद ही चली जाऊंगी, तो देख लो फिर। तो यहाँ शिक्षार्थियों, अब नौकरानी ने वहाँ जाकर बता दिया है, तो अभी यहाँ बहुत ही दिलचस्प बाजी जमी हुई है, और उन्हें ऐसा लग रहा है कि अब भी थोड़ी, बस थोड़ी देर रुक जाओ कि अभी मीर साहब को मैं हराए देता हूँ। तो उन्हें बहुत गुस्सा आया कि यहाँ इतना अच्छा खेल चल रहा है और इनको दवा की पड़ी है। तो अब इन्होंने क्रोधित होकर क्या कहा है, क्या ऐसा दम लबों पर है, क्या बिल्कुल मरने वाली हैं, थोड़ा सा सब्र कर लो। अब जिसे दर्द है उसे सब्र करने के लिए कहा जा रहा है क्योंकि यहाँ पर शतरंज की बाजी जमी हुई है। इससे भी आपको पता चलता है शिक्षार्थियों कि मिर्जा में असंवेदनशीलता थी। उन्हें अपने परिवारजनों के प्रति भी, उनकी उनके सुख और दुख के प्रति भी वे उदासीन थे। क्यों? क्योंकि वे शतरंज का, उनको इतना अधिक नशा था, इतनी अधिक लत उन्हें शतरंज खेलने की थी, तो उस लत के आगे उन्हें अपनी पत्नी का सुख, उनका दुख, उनका गुस्सा, उनकी निराशा कुछ भी नहीं दिखती थी। तो मीर कहते हैं, अरे तो जाकर सुन ही आइए ना, औरतें नाजुक मिजाज होती ही हैं। तो मिर्ज़ा बोलते हैं, जी हाँ चला क्यों ना जाऊँ, दो किस्तों में आपकी मात होती है। तो अब यहाँ पर भी जो बात हो रही है वो शतरंज की खेल की जो गोटियाँ हैं उसके आधार पर कि अब किसकी हार होगी, किसकी जीत होगी, उसके आधार पर है। मीर उन्हें प्रोत्साहित कर रहे हैं कि आप जाकर आइए, और मिर्ज़ा कह रहे हैं कि मैं नहीं जाऊँगा क्योंकि यहाँ तो बाजी बहुत अच्छी जमी है और बिल्कुल अभी थोड़ी ही देर में आप हारे जाते हैं, इसीलिए आप मुझे भेज रहे हैं ताकि आप पीछे से कुछ इस तरह की गोटियां, आप मोहरे जो हैं वो आप बदल दें। जनाब इस भरोसे न रहिएगा, वह चाल सोची है कि आपके मोहरे धरे रहें और मात हो जाए, पर जाइए सुनाइए, क्यों खामखा उनका दिल दुखाइएगा। देखिए अब यहाँ पर शिक्षार्थियों इस बात पर ध्यान दीजिए कि जब मीर ये बात कह रहे हैं तो उनके अंतर मन में कहीं भी ये भाव नहीं है कि उनके पति की पत्नी बीमार है और इसलिए वे अपने मित्र को कर्तव्य के प्रति आगाह कर रहे हैं, सचेत कर रहे हैं कि जाइए आपकी पत्नी बीमार है, उसका ध्यान कीजिए। उनकी ये मंशा बिल्कुल नहीं है। उनकी ये मंशा है कि मिर्ज़ा यहाँ से उठें और वे कुछ धांधली इस खेल में कर सकें, और इस बारे में मिर्ज़ा को बहुत अच्छे से ध्यान है। लेकिन आप मिर्ज़ा का भी आप स्वभाव समझिए कि उन्हें इस बात का नहीं है कि बाजी तो एक और लग जाएगी, कोई बात नहीं हार जाएंगे, मेरी पत्नी, मेरी बेगम जो है वो बीमार है। तो ये इस तरह की जो संवेदनशीलता है ये पूरी तरह से वहाँ से गायब है, लुप्त है। मिर्ज़ा, इसी बात पर मात ही करके जाऊँगा। मीर, मैं खेलूंगा ही नहीं, आप जाकर सुन आइए। अरे यार जाना पड़ेगा हकीम के यहाँ, सिर दर्द खाक नहीं है, मुझे परेशान करने का बहाना है। यानी उन्हें ऐसा ही लगता है कि मुझे सचमुच हकीम के यहाँ पर जाना पड़ेगा और इन्हें कोई सिर दर्द विरदर्द नहीं है, ये बिना बात मुझे परेशान कर रही है, मुझे इस खेल से उठाना चाहते हैं, सब लोग हमारे इस खेल खेलने के पीछे पड़े हुए हैं, तो मैं नहीं जाने वाला हूँ। तो मीर कहते हैं, कुछ भी हो उनकी खातिर तो करनी ही पड़ेगी। अच्छा एक चाल और चल लूँ, हरगिज़ नहीं, जब तक आप सुनना आएंगे मैं मोहरे में हाथ ही न लगाऊंगा। मिर्ज़ा साहब मजबूर होकर अंदर गए तो बेगम साहिबा ने त्योरियाँ बदल कर लेकिन कराहते हुए कहा, तुम्हें निगोड़ी शतरंज इतनी प्यारी है, कोई चाहे कोई मर ही जाए पर उठने का नाम ही नहीं लेते, नौज कोई तुम जैसा आदमी हो। यानी यहाँ पर अब पत्नी, जब मिर्ज़ा गए हैं और बेगम से मिलने, तो वहाँ पर पत्नी जो है, बेगम जो है वो शिकायत कर रही हैं और बहुत क्रोधित हैं, दुखी भी हैं, सिरदर्द भी है उन्हें, और उन्हें इस बात का दुख है कि उन्हें अब शतरंज को वो एक तरह से गाली दे रही हैं और कह रही हैं, इतनी ज़्यादा प्यारी है कि मैं मर भी जाऊँ तुम्हें इस बात की चिंता नहीं है, ईश्वर ना करे तुम जैसा आदमी हो। यानी इस तरह का इंसान को ऐसा नहीं होना चाहिए, थोड़ा सा तो देखिए कि उसके घर परिवार के लोग सुखी भी हैं कि नहीं है, उन्हें कोई दिक्कत तो नहीं है, अगर दिक्कत है तो उस दिक्कत को दूर करें, तुम तो बिल्कुल नहीं समझ रहे हो। तो इस सब में ये भाव था। मिर्ज़ा, क्या कहूँ, मीर साहब मानते ही न थे, बड़ी मुश्किल से पीछा छुड़ाकर आया हूँ। अब देखिए आपने देखा कि पहले भी वो इल्ज़ाम मिर्ज़ा जो थे वो मीर पर ही डालते रहते थे और यहाँ भी यही काम उन्होंने किया जब वे खुद नहीं आ रहे थे। आपने देखा ना, मिर्जा खुद आना नहीं चाहते थे, उन्हें लगता था कि उनकी पत्नी सिर्फ उन्हें परेशान कर रही है और अभी तो मीर हारने वाले हैं, मैं अभी नहीं जाने वाला। जबकि मीर उन्हें प्रोत्साहित कर रहे थे कि जाइए, चाहे उसके केंद्र में उनकी इच्छा शायद धांधली करने की हो, लेकिन वो तो उन्हें कह रहे थे कि अपनी पत्नी से मिलकर आइए, देखिए उनके सिर में दर्द है। लेकिन फिर भी देखिए किस तरह के धोखेबाज और झूठे इंसान हैं मिर्जा। यहाँ पर कह रहे हैं कि मीर साहब न मानते थे, बड़ी मुश्किल से पीछा छुड़ाकर, कितना अभिनय कर रहे हैं ये। तो बेगम कहती हैं, क्या जैसे वह खुद निखट्टू हैं वैसे ही सबको समझते हैं? उनके भी तो बाल बच्चे हैं, या सबका सफाया कर डाला? तो अब बेगम जो है वो मीर को कोस रही हैं, बड़ा लती आदमी है, जब आ जाता है तब मजबूर होकर मुझे भी खेलना पड़ता है। देखिए किस तरह से बहका रहे हैं वो अपनी पत्नी को, और कह रहे हैं कि बड़ा लती आदमी है, जैसे वो लती है ये नहीं है, ये भी लती है। तभी तो दो लती व्यक्ति जो, देखिए ना हम किस तरह की संगत में रहते हैं, जिस तरह की संगत हम पसंद करते हैं। अगर किसी स्थिति में हमें किसी व्यक्ति के साथ थोड़ा समय गुजारना हो, तो हमारी पसंद नापसंद, हमारे विचार, हमारी सोच, उसके आधार पर हम तय कर लेते हैं कि इससे हमारी मित्रता कितनी देर की रहेगी, रहेगी भी कि नहीं रहेगी। तो हम हमेशा अपने जैसे व्यक्ति खोज लेते हैं और उन्हीं की संगति में रहना पसंद करते हैं। तभी तो कहते हैं ना कि हम जिस तरह की संगति होती है हम वैसे ही हो जाते हैं। तो यहाँ पर वो कह रहे हैं कि ये व्यक्ति बड़ा लती है और आ जाता है, मुझे तो मजबूरन खेलना पड़ता है, मैं इसके जैसा नहीं हूँ, मैं बिल्कुल भी लती नहीं हूँ, लेकिन ये आता है और मुझे मजबूर होना पड़ता है। तो बेगम भोली हैं और कहती हैं कि धुतकार क्यों नहीं देते, गुस्सा क्यों नहीं कर देते कि जाओ मैं नहीं खेलूंगा। तो अब मिर्ज़ा अपनी मजबूरी जो है वो पूरा लपेट लपेट कर बता रहे हैं, झूठ बोल बोल कर वो कर रहे हैं कि बराबर के आदमी हैं, उम्र में दर्जे में मुझसे दो उंगल ऊंचे, मुलाहिजा करना ही पड़ता है। यानी कि अब इनका जो स्तर है, आर्थिक स्तर है, सामाजिक स्तर है, ये कहीं ना कहीं मुझसे अधिक ही हैं, कम नहीं है, तो मुझे थोड़ा तो लिहाज करना पड़ेगा ना, मैं ऐसे कैसे धुतकार दूँ, मैं नहीं धुतकार पाऊँगा ना। तो इस तरह से वो अपनी मजबूरी बता रहे हैं। तो बेगम क्या कह रही है, तो मैं ही धुतकारे देती हूँ, आप तो नहीं कर सकते हैं, आप तो बराबर के हैं, आप तो उनसे थोड़ा सा कम ही हैं, वो अधिक हैं आपसे, तो कोई बात नहीं, मुझ पर तो कोई बात नहीं आएगी, मैं धुतकार देती हूँ, नाराज हो जाएं तो हो जाएं, कौन किसी की रोटियां खिला देता है, रानी रूठेंगी अपना सुहाग लेंगी। हरिया जा बाहर से शतरंज उठा ला, मीर साहब से कहना मियाँ अब ना खेलेंगे, आप तशरीफ ले जाइए। तो इस तरह से शिक्षार्थियों बेगम जो है वो खुद जिम्मा उठा लेती हैं कि ये बिसात मैं तो हटा कर छोड़ूंगी। तो अपनी नौकरानी को वो बोल देती हैं कि जाओ इनको बोल दो, हमें ज़्यादा परवाह नहीं है, और जाओ इनको बोल दो कि अब नहीं खेलेंगे और तुम शतरंज की बाजी ही बिसात जो है वो उठा लाओ। तो इस तरह से शिक्षार्थियों अब तक हमने इस कहानी में जान लिया है कि किस तरह की स्थितियाँ थी और ये जो दो हमारे पात्र हैं ये कितने लती हैं, कितना अधिक इनको शतरंज खेलने की लत है कि ये कुछ नहीं जानना चाहते हैं। मैं समझती हूँ कि इस पाठ पर बहुत ही विस्तार से चर्चा करने की ज़रूरत है ताकि हम इस कहानी के मूल संदेश को समझ पाएं और इसको अपने शब्दों में भी व्यक्त कर सकें। तो चलिए मैं आपसे विदा लेती हूँ, धन्यवाद, नमस्कार।